भक्ति आंदोलन दो। लगभग 300 वर्षों से भी ऊपर के समय तक भारतीय जीवन को अनुप्राणित करने वाले भक्ति आंदोलन की चर्चा करते हुए प्रायः देशी विदेशी विद्वानों ने एक महान ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक घटना के रूप में उसका स्मरण किया है। किसी किसी ने उसे धर्म, समाज, संस्कृति, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके तलस्पर्शी प्रभाव की चर्चा करते हुए उसे एक नया युगांतर भी माना है। भक्ति आंदोलन के व्यापक जनाधार विशेषतः कोटि कोटि दलितों, पीड़ितों और शोषितों के जीवन में आत्मसम्मान पूर्वक जी सकने की एक नई आशा का संचार करने एवं उनके व्यापक सहयोग और शिरकत के बल पर देश के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक शताब्दियों की कालावधि में भी अपने सार्थक प्रभाव को कायम रख सकने के नाते उसे मध्यकाल के एक महान जन आंदोलन की संज्ञा भी दी है। उसे यूरोप तथा इटली के रेनेसांस के समानांतर भारतीय जन जागरण भी कहा गया है, लोक जागरण के नाम से भी अभिहित किया गया है। विभिन्न वर्गों तथा वर्ण व्यवस्था से जर्जर सामाजिक ऊंच नीच की भावना से आक्रांत नाना प्रकार के धार्मिक भेदभाव, कर्मकांड एवं विधि निषेधों से प्रचारित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव और उसके द्वारा उद्घोषित मनुष्य सत्य हमारे लेखे उस समय की एक ऐसी अभूतपूर्व घटना एवं अनुभव था जिसकी मिसाल नहीं है। वर्ग, वर्ण, संप्रदाय तथा धर्मगत बंधनों की अवहेलना करते हुए मनुष्य मात्र को ईश्वरोपासना का समान अधिकारी घोषित करने वाली शास्त्रगत व्याख्याएं तथा व्यवस्थाएं देकर आचार्यों ने इस काल में एक ऐसी सेक्युलर विचारधारा की नींव रखी जो अपने समय को देखते हुए क्रांतिकारी कही जा सकती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पहली बार अंत्यजों और सताए हुए वर्गों ने अपने संत दिए और इन संतों ने पहली बार निर्भीक और निश्चिंत मन से धर्म और वर्ण, जाति और संप्रदायगत बंधनों और चार दीवारियों को तोड़ते हुए मानव धर्म तथा मानव संस्कृति का नारा बुलंद किया। यह सही है कि किस भक्ति आंदोलन से सामाजिक जीवन का अभिशाप सदा के लिए दूर नहीं हो सका। व्यवस्था की बुनियाद कुछ झटके खाकर भी पहले जैसी ही बनी रही। संतों की वाणी भी अधिकतर सदिच्छा के धरातल पर तक ही सीमित रही। भक्ति का आंदोलन भी सब समय और सब जगह समस्तरीय नहीं रहा, उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। नए नए विचार तथा नए नए मत उसके आकृति को प्रशस्त तथा संकुचित करते रहे। उसकी गति और व्याप्ति भी फैलती सिकुड़ती रही और समाज का प्रभु वर्ग अंततः उसके सूत्र अपने हाथ में लेने में कामयाब हो गया। परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का इस्तेमाल चली आ रही व्यवस्था को मजबूत बनाने में किया जाने लगा। परंतु इन सब बातों के बावजूद भक्ति आंदोलन को ऐतिहासिक महत्व और उसका सांस्कृतिक कर्तृत्व कमजोर नहीं होता। के दामोदरन ने भक्ति आंदोलन के बिखरने के अन्य कारणों की ओर संकेत करते हुए लिखा है, धर्म के लिए प्रेरणा मूलतः संवेदनात्मक होती है। तर्क करने और युक्ति पूर्वक सोचने का मौका कम मिलता है, अतः धार्मिक भावना न तो सामाजिक समस्याओं के तर्कसंगत विश्लेषण के लिए सक्षम है, न ही इन समस्याओं का युक्तियुक्त समाधान ढूंढ निकालने में वह सफल होती है। भक्ति आंदोलन ने आम जनता में तो जागृति पैदा की, किंतु वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मौजूद असंगतियों के वास्तविक कारणों को समझने और मानव के दुखों और पीड़ाओं के नूतन समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ। यही एक मुख्य कारण है कि इस आंदोलन की परिणत जिसने सामंती उत्पीड़न और पुरोहिती रूढ़िवाद के विरुद्ध जनता को संयुक्त किया था, अंततः घोर संकीर्णतावाद में हुई। सिख धर्म की विकास प्रक्रिया इसका स्पष्ट उदाहरण है। दामोदरन आगे लिखते हैं, यदि यह आंदोलन सदा के लिए सामाजिक असमानताओं और जाति प्रथा के अन्यायों को नहीं खत्म कर सका तो संभवतः इसका कारण यह था कि कारीगर, व्यापारी और दस्तकार जो इस आंदोलन के मुख्य आर्थिक आधार थे अब भी कमजोर और असंगठित थे। कुछ भी हो, इस सारे आरोह अवरोह के बावजूद भारतीय जनजीवन में के सबसे बड़े आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युत्थान के रूप में हमें वह अपनी पहचान कराता है। कहना न होगा कि उसकी तमाम सीमाओं के बावजूद उसके बारे में मूलवर्ती धारणा रही है और है। इस भक्ति आंदोलन का सवाल एक अर्ध शतक से भी ज्यादा समय से हिंदी के आचार्यों और आलोचकों के बीच किसी न किसी रूप में उठता रहा है। या तो इसे साहित्य इतिहास की पुस्तकों में उठाया जाता रहा है, या इस पर स्वतंत्र किताबें लिखकर इस पर चर्चा की जाती रही है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और आगे के विद्वानों के बीच इस तरह तक इस चर्चा का प्रसार है। इस तमाम चर्चा के बीच से कुछ ऐसे सवाल उभरे हैं, भक्ति आंदोलन और उसके साथ सामने आने वाली रचनाशीलता की सही पहचान के लिए जिनके जवाब देना है या जिनके बीच से गुजरना बहुत जरूरी है। इन विद्वानों में भक्ति आंदोलन के तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर मतभेद भी हैं। जिन सवालों का संकेत हमने ऊपर किया है वे वस्तुतः इसी मतभेद के बीच से ही उभरे हैं। अतएव अगली पंक्ति में हम हिंदी के आचार्यों के बीच हुई भक्ति आंदोलन संबंधी चर्चा की पड़ताल करना चाहेंगे ताकि अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को अधिक कारगर तरीके से पहचान सकें। एक मुद्दा उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन के उदय का है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इसकी पैदाइश ईसाइयत में देखी थी, यह उनकी यह तो बात साफ तौर से गलत साबित हो चुकी है उन आलवारों की रचनाओं के साक्ष्य पर जिसमें प्रपत्ति का वह रूप विद्यमान है जिसे ग्रियर्सन ने भ्रमवश ईसाइयत की देन माना था। आलवारों की रचनाएं साबित करती हैं कि भक्ति का यह रूप ईसाइयत की देन न होकर भारतीय जमीन की उपज है। बावजूद इसके यह सवाल अभी तक बना हुआ है कि जो भक्ति आंदोलन मध्य युग में समूचे उत्तर भारत में अपनी पहचान कराता है उसकी मूलवर्ती प्रेरणा और क्या और कौन सी है। कौन सा वह दुर्दम शक्तिपात था जिसने भक्ति के दक्षिण की ओर से बहने वाले मंद मंद सोते को उत्तर में एक उच्छल नद का रूप प्रदान किया, एक ऐसा वेगवान प्रवाह बनाया जिसमें सदियों के रूढ़िबद्ध शास्त्र वर्ण धर्म और संप्रदायगत विधि निषेध तिनके के समान बहते हुए दिखाई पड़े और जो शतधा विभक्त होकर सदियों तक न केवल उत्तर भारत के जनजीवन को शीतल करता रहा, जिसने पश्चिम और पूर्व की जनता के आतप तप्त प्राणों को भी समान रूप से सींचा और हरा भरा किया। कहने का मतलब है कि वे कौन से कारण हैं जिन्होंने उत्तर भारत की वैष्णव भक्ति को जो गुप्त सम्राटों तक अर्थात 5वीं शताब्दी तक अपने चरम शिखर पर थी मंद हो जाने या दब जाने को विवश किया। 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उसे लुप्त हो जाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद दक्षिण से आने वाले उसके मंद प्रवाह को उत्तर की ओर बहने और एकदम से वेगवान रूप में फूट पड़ने को बाध्य किया। सवाल और भी हैं, अर्यात क्या जैसा कि ग्रियर्सन ने कहा है उत्तर भारत में भक्ति का फूटना बिजली की चमक के समान कोई आकस्मिक घटना थी, क्या वह जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है मुसलमानों से पराजित और पराभूत उत्तर भारत की जनता की हताश प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति थी, अथवा क्या वह जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास थी। सवाल और भी हैं, क्या उत्तर भारत में भक्ति का यह उभार बाहरी शक्तियों और भारतीय समाज व्यवस्था के आंतरिक संघर्ष मसलन सिद्धों नाथों आज से भारतीय वर्ण व्यवस्था तथा पौराणिक धर्मत को मिलने वाली चुनौती से बचाव का एक तरीका था या फिर अनात्मवाद की निराशा का फल था। भक्ति आंदोलन का मुद्दा उठते ही एक साथ ढेर सारे सवालों का अंबार सा लग जाता है। इसी नाते हमने कहा है कि भक्ति आंदोलन की सही पहचान इन और इन जैसे तमाम सवालों के बीच से गुजर कर ही की जा सकती है। प्रस्तुत निबंध में हम ऐसा ही विनम्र प्रयास करना चाहते हैं। भक्ति आंदोलन पर हिंदी के विद्वानों ने जो चर्चा की है उसका जिक्र करने से पहले यह देख लेना उचित होगा कि उसके पहले के क्या कुछ अन्य सूत्र हैं जो भक्ति आंदोलन की ओर संकेत करते हों। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कुछ श्लोक हैं जो सीधे भक्ति और भक्ति आंदोलन के प्रवाह की ओर इशारा करते हैं। इसी प्रकार हिंदी की एक उक्ति भी बहुत लोकप्रिय है और काफी विश्वास के साथ प्रमाण के रूप में उद्धृत की जाती है। पहले संस्कृत श्लोक को देखें। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता तत्र घोरे कले योगात पाखंडे खंडिता का दुर्बलाहम चिरंयाता पुत्राभ्याम सहमंदताम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता म्योति सम्यक श्रेष्ठ रूपा तु साम्प्रतम। हिंदी में उक्ति है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि भक्ति का उदय द्रविड़ देश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। परंतु इस तथ्य से आगे दोनों उदाहरण दो तरह के संकेत देते हैं। संस्कृत का श्लोक यह बताता है कि भक्ति का आगे का विकास कर्नाटक और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र में हुआ, उसका पतन गुजरात प्रदेश में हुआ, फिर वृंदावन में उसे पुनर्जीवन उत्कर्ष तथा श्रेष्ठत्व की प्राप्ति हुई। हिंदी की अनुश्रुति भक्ति के दक्षिण से रामानंद द्वारा लाए जाने और उत्तर में कबीर दास द्वारा प्रचारित किए जाने का संकेत करती है। ध्यातव्य है कि संस्कृत की उक्ति विशेषता कृष्ण भक्ति की ओर संकेत करती है, परंतु हिंदी की अनुश्रुति का संकेत राम भक्ति की ओर है। यदि हम इस सारे संदर्भ का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि अपने आरंभिक दौर में जहाँ तक आलवारों का संबंध है, कृष्ण की भक्ति पर अधिक बल होते हुए भी व्यवहारतः राम और कृष्ण भक्ति में कोई विभेद नहीं मिलता। आलवारों और नायनारों ने भक्ति का उपयोग दक्षिण भारत में बौद्धों और जैनों को भगाने के लिए किया था। इधर शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है, परंतु जैसे ही बौद्धों और जैनों का प्रभाव कम हुआ, इन आलवारों और नायनारों में आपसी संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष का साक्ष्य भी हमें इतिहास देता है। इस प्रकार इन तीनों चीजों को मिलाकर दक्षिण में भक्ति के तीन रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप वैष्णव संप्रदाय की भक्ति का, जिसमें राम और कृष्ण से संबंधित भक्ति संप्रदाय भी मिला हुआ है। इसका विकास आलवारों से होता हुआ नाथ मुनि यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी आदि के द्वारा आगे तक हुआ। भक्ति की दूसरी शाखा शैवों की थी, जो नायनारों के बीच से विकसित होती रही। तीसरी शाखा बौद्धों और जैनों को मार भगाने के उपरांत वैष्णवों और शैवों के बीच उत्पन्न हुए भेदों को दूर करने के लिए अपना समन्वयात्मक रूप लेकर आई। इसी की एक कड़ी कर्नाटक के पुंडलीक थे, जिन्हें कुछ कारणों से कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र की ओर आना पड़ा। महाराष्ट्र के पंढरीपुर में आकर उन्होंने भीमा नदी के किनारे विष्णु और शिव के मिले जुले रूप में विठल भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। ज्ञानदेव के भाई निवृत्तिनाथ ने इस तथ्य को बड़े गौरव के साथ उजागर किया है। पुंडलीक के भाग्य का इस चराचर जगत में कौन वर्णन कर सकता है, जिसने विष्णु सहित शिव को लाकर पंढरीपुर में भीमा नदी के किनारे सबके दर्शनार्थ स्थापित किया। निवृत्तिनाथ का यह अभंग इसी बात की ओर इशारा करता है। कुंडली कांचे भाग्य वर्ण वचा अमरीम, नाही चराचर ऐसो कोणी, विष्णु सहित शिव आणिता पंढरे, भीमा तिकरी पेखड़े। संत साहित्य के प्रेरणा स्रोत पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृष्ठ 85। यही कारण है कि वारकरी संप्रदाय के संतों में श्री विष्णु और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंढरीपुर में विठल अर्थात विष्णु भगवान की जो मूर्ति है, उसके मस्तक पर भगवान शिव का लिंग बना हुआ है। रूपहला डालस पाहता गोप विष्णु, महिमा वर्णिता महेश, जेणे मस्तक बंदिला। बलदेव उपाध्याय भागवत संप्रदाय, पृष्ठ 585, ज्ञानदेव अभंग। यह बात इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में भक्ति की प्रारंभिक दौर सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित ज्ञानदेव परिवार और सामाजिक दृष्टि से निम्न ज्ञान देवादि के हाथ में रही। यही कारण है कि भक्ति का मजबूत आधार मिलने पर भी उनमें एक आक्रामकता है। सामाजिक भेदभाव को नामदेव ने आड़े हाथों लिया। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा है कि ज्ञान देवादि परिवार में दक्षिण से आई भक्ति पश्चिमी उत्तर भारत से आई हुई नाथों की परंपरा का अद्भुत मेल थी। ऐसा इसलिए कि उनकी गुरुकुल परंपरा नाथों से जुड़ी थी। इस तथ्य को ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी में स्वीकार किया है। शैवों की भक्ति शाखा को वह विस्तार और महत्व नहीं मिल सका जो वैष्णव भक्ति शाखा को मिला। वैष्णव भक्ति की यह शाखा कर्नाटक और महाराष्ट्र में कहीं अधिक न उलझकर उत्तर भारत में आई। उत्तर में इसी से कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के सोपान खुले। पहली के मुख्य सूत्राधार वल्लभाचार्य बने, जबकि दूसरी को रामानंद ने प्रचारित किया। पहली शाखा के अष्टछाप के कवियों का आविर्भाव संभव हुआ, जबकि दूसरी से कबीर आदि का। यहाँ यह ध्यातव्य है कि रामानंद ने व्यावहारिक स्तर पर राम के सगुण रूप का ही प्रचार किया, गो कि कबीर उनके शिष्य होकर भी सगुण राम के प्रचारक न बने। यह बात उन पर अवतारवाद के प्रभाव के बावजूद लागू होती है। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने राम नाम का बीज शब्द तो गुरु से ग्रहण किया है, परंतु उसकी व्याख्या और विस्तार अपने अनुभव से किया है। कबीर से थोड़ा पहले नामदेव उत्तर भारत में अपनी भक्ति का प्रचार कर गए थे। एक प्रकार से वे कबीर की भक्ति के स्वरूप की पूर्व पीठिका तैयार कर गए थे। कबीर ने उनके इस महत्व को स्वीकार किया है। उत्तर भारत के आध्यात्मिक वातावरण में उस समय नाथ पंथियों का भी व्यापक प्रभाव था। यह प्रभाव समाज के उन वर्णों पर विशेष रूप से था जिनमें कबीर का संबंध था। यही कारण है कि कबीर नाथ पंथियों से भी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, और इस तथ्य को उन्होंने निसंकोच भाव से स्वीकार भी किया है। रामानंद के प्रभाव में आने के बाद कबीर को राम नाम का बीज शब्द तो मिला ही, भक्ति और भक्तों की एक परंपरा भी मिली। इस प्रदेय को भी कबीर ने अकुंठ भाव से स्वीकार किया है। यह वह समय था जबकि सूफियों की विचारधारा का भी भारत में प्रवेश हो चुका था, और पंजाब तथा राजस्थान में उसका प्रसार भी था। कबीर ने सूफियों के प्रभाव को भी ग्रहण किया। इन विविध प्रकार की भक्ति और भक्तिगत साधनाओं के संधि स्थल पर खड़े होने के नाते ही कबीर की अपनी भक्ति साधना का स्वरूप सबसे अनूठा बन सका है। कबीर इन तमाम भक्ति साधनाओं की सीमाओं से भी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार न कर अपने ढंग से अपने विवेक के तराजू पर तौल कर स्वीकारा। बहुत कुछ इनको छोड़ा भी, उन पर इन साधनाओं का कहीं और कोई कतई आतंक नहीं है। कबीर के समय में उत्तर भारत में गोरखनाथ और गोपीचंद के बाद उनकी नकल पर खड़े होने वाले साधुओं की भरमार हो गई थी। ये साधारण जन को अपनी चमत्कारी क्रियाओं से आतंकित कर उस पर अपना रोब जमाए हुए थे। कबीर जिस प्रकार पंडितों और मुल्लाओं के रूढ़िवाद से लड़ते हैं, उसी प्रकार इन नकली साधुओं से भी। वस्तुतः कबीर की लड़ाई इस प्रकार की नकल के खिलाफ चलने वाली लड़ाई थी। वह हर प्रकार के रूढ़िवाद और कठोरतापन के खिलाफ जारी की गई मुहिम थी। कबीर इस मुहिम में सदा हिरावल रहे। कबीर की ही तरह जायसी भी उस दौर के रचनाकार हैं, जबकि राजनीतिक तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों का संघर्ष जारी था। देखने की बात यह है कि जायसी इस संघर्ष को अपने समय की राजसत्ता और स्थितियों के मध्य चित्रित नहीं करते। वे अपने समय से पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में पहुंचते हैं, और उस समय के संघर्ष को, जिसमें एक ओर अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरी ओर चित्तौड़ का शासक रत्न सिंह या रत्न सेन, और जो जायसी के समय में अतीत बन चुका है, उसे अभिव्यक्ति देते हैं और उसे एक किस्से के रूप में पेश करते हैं, काव्य का विषय बनाकर। कबीर और जायसी के यहाँ इन स्थितियों के प्रति उनका जो रुख है, उसमें भी बुनियादी अंतर है। कबीर का पंडित मुल्ला का दायरा हिंदू या इस्लाम धर्म या मजहब के स्तर पर तो व्यापक है, परंतु वह राजनीति के स्तर पर अपने समय के शासक वर्ग से सीधे नहीं टकराता। जायसी ऐसा कर सके हैं। वे हिंदू मुसलमान संघर्ष की बात को राजनीति के स्तर पर भी उभारते हैं, भले ही उन्होंने उसे अतीत के संदर्भ में उभारा हो। कबीर इस संघर्ष के धार्मिक आयाम तक ही सीमित रहे हैं, जायसी उसके राजनीतिक आयाम को भी छूते हैं। रुख के इस बुनियादी अंतर के बावजूद कहा जाएगा कि कबीर और जायसी दोनों ही मूलवर्ती रूप से सेक्युलर हैं। दोनों में एक स्तर पर साम्य है कि जायसी धार्मिक स्तर पर जिस ईश्वर की बात करते हैं वह निर्गुण है, जिस आचरण की बात करते हैं वह कट्टर मुसलमानों की तरह सामूहिक न होकर व्यक्तिगत है। उनका ईश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। कबीर भी कुछ ऐसा ही जायसी के पहले कह चुके थे, किंतु सूर आदि कवि भक्त का जो रूप आगे प्रस्तुत करते हैं वह अपने में कबीर तथा जायसी से भिन्न प्रकार का है। वह योग परक निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान के विरोध में है। हिंदू मुसलमान संघर्ष वाला स्वर भी वहाँ नहीं है। यही बात तुलसी में भी दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुर आदि निर्गुण का जो विरोध करते हैं वह पौराणिक भक्ति वाले निर्गुण का विरोध न होकर योग वाले निर्गुण का विरोध है। सवाल है कि कबीर आदि में सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध जो विद्रोह भाव है वह सुर आदि में क्यों नहीं है या फिर क्यों मंद है। इस सवाल की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम भक्ति आंदोलन को लेकर हिंदी के आचार्यों में जो विवाद हुआ है उस पर अपने को केंद्रित करेंगे। हिंदी साहित्य के अपने इतिहास में आचार्य शुक्ल ने मध्यकालीन धार्मिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रसार के कारणों और स्रोतों का कुछ हवाला दिया है। आचार्य शुक्ल का एक पैराग्राफ में उल्लिखित निम्न वक्तव्य ही आगे चलकर हयाप्रसाद द्विवेदी की चर्चा के केंद्र में आया और विवाद का सबसे अधिक प्रगल्भ मुद्दा बना। आचार्य शुक्ल इस पैराग्राफ में कहते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ न कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के नीचे हिंदू जनता पर उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हिंदी साहित्य के अपने इतिहास में भक्ति काल के विवेचन का प्रारंभ करते हुए सामान्य परिचय के रूप में राजनीतिक परिस्थिति का विवरण देते हुए आचार्य शुक्ल ने अपनी उक्त मान्यता प्रस्तुत की है, जो भक्ति काल और भक्ति काल के उत्तर भारत में उदय के संबंध इस्लाम के आक्रमण से पराभूत अपने पौरुष से हताश हिंदू जात के पराजय बोध से जोड़ती है। यह बात कि भक्ति काल और भक्ति काव्य के उत्तर भारत में उदय का संबंध आचार्य शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण से एकाध अन्य स्थानों पर जोड़ा भी है सही है। उदाहरण के रूप में वीरगाथा काल का प्रकरण समाप्त करते हुए वे कहते हैं, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल को महाराज हमीद के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं ने न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। सूरदास पुस्तक में वल्लभाचार्य पर लिखते हुए आचार्य शुक्ल ने उनके कृष्णाश्रय नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा की है और लिखा है, कृष्णाश्रय नामक अपने प्रकरण ग्रंथ में आचार्य जी ने देश काल की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें वेद मार्ग पर या मर्यादा मार्ग का अनुसरण उन्हें अत्यंत कठिन या असंभव दिखाई पड़ा। वल्लभाचार्य जी के इस समय में देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह से दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का राज्य विजयनगर रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कृत का प्रभाव अच्छी तरह जम रहा था। सूफी भक्तों या पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की भक्ति का प्रचार कार्य चल रहा था। आचार्य शुक्ल की इस इतिहास दृष्टि की आलोचना सबसे पहले आचार्य द्विवेदी ने की और भक्ति काल तथा भक्ति काव्य के उत्तर भारत में उदय को लेकर अपनी नई स्थापना दी, जो निस्संदेह शुक्ल जी की उक्त मान्यता की तुलना में अधिक प्रशस्त तर्कपुष्ट और ग्राह्य है। आचार्य द्विवेदी के उपरांत अन्य कुछ विद्वानों ने भी आचार्य शुक्ल की उक्त इतिहास दृष्टि को संकुचित और सांप्रदायिक आग्रह पर आधारित बताया, यहाँ तक कि उसे साम्राज्यवादी हितों का पोषक भी कहा। हम इस प्रसंग की चर्चा करेंगे। पहले हम भक्तिकाल और भक्ति काव्य के उदय के बारे में, विशेषतः उत्तर भारत में आचार्य शुक्ल के कुछ और कथनों को भी प्रस्तुत करना चाहेंगे जो उनके अपने इतिहास में तथा सूरदास जैसी किताब में हैं। इन कथनों से भक्तिकाल और भक्ति काव्य के उत्तर भारत में उदय के बारे में शुक्ल जी के मंतव्यों के विवेचन तथा उनके मूलवर्ती दृष्टि को समझने में हमें मदद मिलेगी।